नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने पश्चिमी एशिया संघर्ष पर चर्चा के लिए आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई। केंद्र ने कहा एलपीजी सिलेंडर भरने की मौजूदा समय सीमा में कोई बदलाव नहीं। अमेरिका ने ईरान को संघर्ष समाप्त करने के लिए 15 सूत्री योजना का प्रस्ताव भेजा। ईरान का कई खाड़ी देशों पर हमला जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार रोजगार और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों तथा सहकारी समितियों को सशक्त बना रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कोविड के बाद 1000 से अधिक रेलगाड़ियां शुरू की गई है। बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान द्वारा निहत्ते लोगों की हत्या की स्मृति में आज नरसंहार दिवस मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर चर्चा करने के लिए आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संकट के समय रचनात्मक भूमिका निभाना विपक्ष का भी कर्तव्य है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा होगी और सभी को अपने विचार रखने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया संघर्ष पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ने तेल, गैस और उर्वरक की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली है। सरकार ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई के तहत एलपीजी कनेक्शन के लिए रिफिल बुकिंग की समय सीमा को संशोधित करके 45 दिन कर दिया गया है। दावे में यह भी कहा गया है कि गैर पीएमयूवाई सिंगल बॉटल कनेक्शन के लिए नई समय सीमा 25 दिन और गैर पीएमयूवाई डबल बॉटल कनेक्शन के लिए 35 दिन है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई बदलाव नहीं किया गया है और मौजूदा रिफिलिंग बुकिंग की समय सीमा अपरिवर्तित है। भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कहा है कि देश भर में ईंधन की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि एलपीजी, कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्लू का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति श्रृंखला बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहें पूरी तरह निराधार है। अमरीका ने ईरान को संघर्ष समाप्त करने और उसके परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के उद्देश्य से 15 सूत्री प्रस्ताव भेजा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान समझौता करना चाहता है। मीडिया की खबरों के अनुसार यह प्रस्ताव मध्यस्थों के माध्यम से भेजा गया था। इसमें शत्रुता को रोकने, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाने और उसकी क्षेत्रीय भूमिका को नया रूप देने के लिए व्यापक ढांचा प्रस्तुत किया गया है। इस योजना में ईरान से अपने 3 प्रमुख परमाणु संयंत्रों को बंद करने, यूरेनियम संवर्धन रोकने और अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को निलंबित करने का आह्वान किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के 26वें दिन भी पूरे क्षेत्र में हमलों का सिलसिला जारी है। राजनयिक गतिविधियां भी तेज हो गई है। इसराइल की सेना ने दक्षिण लेबनान में अभियान तेज कर दिया है और सीमा पर दीर्घकालिक सुरक्षा योजना के संकेत दिए हैं। ईरान द्वारा कतर के गैस लाफान औद्योगिक शहर के मुख्य प्रतिष्ठानों पर मिसाइल हमले के बाद कतर एजेंसी ने कई दीर्घकालिक तरलीकृत गैस आपूर्ति एलएनजी अनुबंधों पर अप्रत्याशित घटना घोषित कर दी है। इस व्यवधान से दक्षिण कोरिया, चीन, इटली और बेल्जियम के खरीदारों के प्रभावित होने की आशंका है। ईरान की मिसाइल ने 18 से 19 मार्च को गैस लाफान रास लाफान पर हमला किया था। लोकसभा ने ध्वनिमत से वित्त विधेयक 2026 पारित कर दिया है। यह विधेयक वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने का प्रावधान करता है। सदन ने सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दे दी है। आज सदन में वित्तीय विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, एमएसएमई, किसानों तथा सहकारी समितियों को सशक्त बना रही है। उन्होंने कहा कि ये रोजगार सृजन, उत्पादन और देश के समग्र विकास के केंद्र में है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि यह वित्तीय विधेयक मध्य वर्ग पर केंद्रित है और सरकार ने 17 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दे दी है। पश्चिम एशिया संकट और उभरती चुनौतियों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए उनके प्रभावों को कम करने के लिए कदम उठा रही है। श्रीमती सीतारमण ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष सरकार के साथ खड़े होने के बजाय गैर जिम्मेदाराना कदम उठा रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना है। इस दौरान श्री राय ने कहा कि देश की संप्रभुता और अखंडता के अनुरूप राष्ट्र की सेवा के इच्छुक शैक्षणिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों को बाधित नहीं किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में कोविड के बाद लगभग 1024 नई रेलगाड़ियां चलाई गई है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि इसके साथ ही मौजूदा रेलगाड़ियों में 4651 नए कोच भी जोड़े गए हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे ने विश्वसनीय यात्रियों को निर्बाध टिकट बुकिंग सुनिश्चित करने के लिए धोखेबाजी रोकने के उपाय किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण रेलगाड़ियों की दुर्घटनाओं में कमी आई है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया है कि सरकार ने दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबकों की घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। श्री सिंह ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि वर्तमान में भारत को दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबकों की लगभग 4000 इकाइयों की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित होने पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भाजपा का स्थापना से ही यह संकल्प रहा है कि देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए एक समान कानून हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की राज्य सरकारें इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। केरल में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र की कल जांच हुई। नामांकन वापस लेने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची कल उपलब्ध होगी। छत्तीसगढ़ में आज माओवादी संगठन के एक शीर्ष नेता पापा राव समेत कुल 18 माओवादियों ने समर्पण कर दिया है। समर्पण करने वालों में 7 महिलाएं शामिल है। पापा राव माओवादी संगठन की राज्य क्षेत्रीय समिति का सदस्य था और उस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान द्वारा निहत्ते लोगों की हत्या की स्मृति में आज नरसंहार दिवस मना रहा है। अंडर 23 ट्राई नेशन फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 आज से शुरू होकर 31 मार्च तक अरुणाचल प्रदेश के यूपीआर स्थित गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में चलेगा। इस बहुप्रतीक्षित चैंपियनशिप में उभरते हुए फुटबॉल सितारों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। प्रतियोगिता में भारत, तजाकिस्तान और भूटान की राष्ट्रीय अंडर 23 टीमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे से भिड़ने की तैयारी कर रहा है। विंटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और ओपन नेशनल स्की माउंटेनियरिंग चैंपियनशिप 5 से 14 अप्रैल 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आयोजित किया जाएगा। चैंपियनशिप 15 अप्रैल को होगा। इंटरनेशनल स्की माउंटेनियरिंग फेडरेशन स्कीमो इंडिया फेडरेशन और अरुणाचल प्रदेश का युवा मामला विभाग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।